नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। गुजरात उच्च न्यायालय ने घरेलू शीतल पेय ब्रांड रसना को बड़ी राहत देते हुए दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। एनसीएलटी के अहमदाबाद पीठ ने पिछले हफ्ते 71.27 लाख रुपए के भुगतान चूक के मामले में रसना के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित करते हुए एक अंतरिम समाधान पेशेवर भी नियुक्त किया गया था। रसना इंडस्ट्रीज के प्रवर्तकों ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, वहां से उन्हें राहत मिल गई। न्यायमूर्ति वीडी नानावती ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी के समक्ष अपील सूचीबद्ध न होने तक दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि सरकार उद्योग जगत को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप ढलने के लिए 6 महीने का वक्त दे सकती है। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि उद्योग जगत को इस कानून के प्रावधानों को अपनाने में लगने वाले वास्तविक समय के बारे में फैसला हितधारकों के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ एक संवाद सत्र में कहा कि नई व्यवस्था को लागू किए जाने से कारोबार में किसी भी तरह का गतिरोध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार डेटा संरक्षण बोर्ड को जल्द अधिसूचित करने और सभी नियमों के साथ तैयार है। चंद्रशेखर ने कहा, हम डिजिटल मंचों को नए कानून के अनुरूप ढलने के लिए कुछ समय दे सकते हैं ताकि ग्राहकों से डेटा जुटाने की प्रक्रिया उसके मुताबिक हो। हम इसके लिए 2 साल नहीं देंगे, ये मोहलत 6 महीने की हो सकती है ताकि नए कानून को व्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके। श्री सीमेंट लिमिटेड की पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित ग्राइंडिंग इकाई का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को किया। इस संयंत्र की स्थापना 550 करोड़ रुपए के निवेश से हुई है। यह राज्य में कंपनी की एक ऐसी पहली इकाई है और इसकी क्षमता 30 लाख टन प्रतिवर्ष है। श्री सीमेंट लिमिटेड के एक अधिकारी ने कहा कि इससे 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कंपनी को बधाई देते हुए बनर्जी ने कहा कि ये निवेश राज्य की औद्योगिक शक्ति को मजबूत करेगा और सीमेंट क्षेत्र में इसकी वृद्धि क्षमता साबित करेगा। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को सुझाव दिया है कि ई कॉमर्स निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण दिया जाए। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि ऐसा रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाना चाहिए। ई कॉमर्स निर्यातकों या बैंकों को इस तरह के ऋण के संबंध में कोई भी समस्या होने पर वो उसे विदेश व्यापार महानिदेशालय के ध्यान में ला सकते हैं। गौरतलब है कि नई विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य भी ई कॉमर्स के जरिए निर्यात को बढ़ावा देना है। DGFT ने एक व्यापार टिप्पणी में कहा कि ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात से संबंधित बकाया मुद्दों पर उद्योग प्रतिनिधियों, निर्यातकों और नोडल विभागों के साथ बातचीत की गई। टिप्पणी में कहा गया कि एक मुद्दा ई कॉमर्स निर्यात के लिए खेप भेजने से पहले और बाद में निर्यात ऋण की अनुपलब्धता था और इस संबंध में RBI के साथ चर्चा हुई है। टिप्पणी में आगे कहा गया कि मास्टर सर्कुलर मुद्रा निर्यात ऋण और निर्यातकों के लिए ग्राहक सेवा में एक व्यापक रूपरेखा दी गई है और सभी पात्र लोगों को खेप भेजने से पहले और बाद में निर्यात ऋण तक पहुंच की अनुमति है। इसमें ई कॉमर्स निर्यातक भी शामिल हैं। बिजली इंजीनियरों के संगठन AIPEF ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला के आयात संबंधी केंद्र सरकार के निर्देशों से सोमवार को इन संयंत्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका जताई। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले पर चलने वाली बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी पूरा करने के लिए मार्च 2024 तक 4% कोयला आयात करना होगा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों को कोयले की खपत एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए कोयला आयात करने को कहा है। हालांकि AIPEF के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों को समय पर कोयला नहीं मिलने की वजह रेलवे ढुलाई से जुड़ी बाधाएं हैं, लिहाजा राज्य के संयंत्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है। दुबे ने कहा कि आयातित कोयले की कीमत केंद्र सरकार को देनी चाहिए क्योंकि इस स्थिति के लिए राज्यों के ताप विद्युत संयंत्र जिम्मेदार नहीं हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।